दिन भर 24 जुलाई दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदर। लोकसभा अध्यक्ष ने कागज फेंकने के आरोप में कांग्रेस के 6 सांसदों को निलंबित किया।
प्रजातंत्र के ऊपर काला धब्बा है, जिस तरीके से एक्शन लिया गया है कल सरकार के द्वारा, और इसका पूर्ण जोर विरोध हम लोग करेंगे।
उत्तर प्रदेश में एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता को लेकर हंगामा। निठारी कांड में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंधेर को फांसी की सजा।
कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, उसमें उनको होल्ड किया गिल्टी, और गिल्टी होल्ड करने के बाद में इसको जघन्यतम अपराध मानते हुए उन दोनों को 302 में फांसी की सजा सुनाई है।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के 6 सांसदों को 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष का कहना था कि इन सांसदों के बर्ताव ने अध्यक्ष के आसन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। लोकसभा अध्यक्ष ने अपने आदेश में कहा कि गौरव गोगोई, के सुरेश, अधीर रंजन चौधरी, रंजीत रंजन, सुष्मिता देव और एम के राघवन ने अध्यक्षीय आसन की तरफ कागज फेंके। पाकिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक लाहौर के एक व्यस्त इलाके में हुए धमाके में 26 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 लोग घायल हो गए। मरने वालों में पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। रिपोर्टों के मुताबिक धमाका कार बम के जरिए किया गया। रिपोर्टों में कहा गया है कि हमलावर संभवतः इलाके में तैनात पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाना चाहते थे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए एक आत्मघाती बम धमाके में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 लोग घायल हो गए। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि हमलावर ने खनन मंत्रालय के कर्मचारियों को ले जा रही बस को कार बम के जरिए निशाना बनाया। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। धमाके के वक्त मौके पर मौजूद रहे रफी जसूर ने बताया, दो कारें जल रही थीं, चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थीं, कई दुकानों में आग लगी हुई थी। ये बहुत डराने वाला दृश्य था। महिलाओं समेत हर कोई भागने की कोशिश कर रहा था। इनमें काम पर जा रहे कई लोग भी शामिल थे। ये थे एक प्रत्यक्षदर्शी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और सलाहकार जेरेड कुशनर ने कहा है कि ट्रंप के चुनाव अभियान के दौरान उनकी रूस की सरकार के साथ कोई सांठगांठ नहीं थी। एक लिखित बयान में कुशनर ने उन दावों को गलत बताया है जिनमें कहा गया है कि वह रूस के साथ अनुचित तरीके से संपर्क में थे। उन्होंने अपनी व्यापारिक गतिविधियों में रूस से वित्तीय मदद लेने से भी इनकार किया। पोलैंड के राष्ट्रपति अंजय डूडा ने न्यायपालिका में सुधार से जुड़े विवादास्पद कानून को वीटो कर दिया है। राष्ट्रपति डूडा ने टीवी पर प्रसारित संदेश में कहा कि इस कानून से पोलैंड के समाज में न्याय की भावना पुष्ट नहीं होती। इस कानून के जरिए सरकार को न्यायिक नियुक्तियों का अधिकार दिया गया था। इसका संसद के दोनों सदनों ने अनुमोदन किया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वोजीमियस ब्रोमेल ने कहा कि वो राष्ट्रपति के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा,
It's a very happy day. So this is the main reason for my joy that we.
ये बहुत खुशी का दिन है। खुशी की अहम वजह यह है कि हम दुनिया के पूर्वी हिस्से के रास्ते पर नहीं बढ़े। इससे जाहिर हुआ कि पोलैंड की राजनीतिक संस्कृति कानून के मुताबिक चलने के मूल्यों से जुड़ी है। ये एक लोक लुभावन तरीके से ज्यादा मजबूत है। यही मेरी खुशी का मुख्य कारण है। ये थे पोलैंड के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ब्रोमेल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चीन के भ्रष्टाचार रोधी अधिकारियों के मुताबिक चुंगचिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सचिव सुन जंग साई के खिलाफ जांच चल रही है। साई को हाल तक उभरती राजनीतिक हस्ती के तौर पर देखा जाता था। उन्हें बीते हफ्ते ही पद से हटाया गया है। इसके पहले उन्हें चीन पर नियंत्रण रखने वाली 7 सदस्यीय समिति का दावेदार माना जा रहा था। भारत के स्पेस सैटेलाइट कार्यक्रम में अहम योगदान देने वाले डॉक्टर यूआर राव का निधन हो गया है। वो 85 साल के थे। डॉक्टर राव 1984 से 1994 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के चेयरमैन रहे। तब से लेकर बीते हफ्ते तक डॉक्टर राव देश में बने लगभग हर सैटेलाइट के निर्माण प्रक्रिया के साथ किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। नाइजीरिया के एक प्रांतीय गवर्नर के मुताबिक राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी अगले 2 हफ्तों के दौरान देश लौट आएंगे। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने आज कांग्रेस के 6 सांसदों को 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। इन सांसदों पर अध्यक्ष की ओर कागज फाड़कर फेंकने का आरोप है। सांसदों के सस्पेंड होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में पार्टी के सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि सांसद 5 दिनों तक लोकसभा के अधिवेशन में शामिल नहीं होंगे। जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने जैसे ही कांग्रेस के 6 सांसदों को निलंबित करने का फैसला सुनाया, लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। सत्तारूढ़ भाजपा के सांसदों ने शेम शेम के नारे लगाए, जबकि विपक्षी कांग्रेस के सांसदों ने तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाते हुए संसद से बाहर चले जाने का फैसला किया। निलंबित किए गए सांसद भीड़ की हिंसा या मॉब लिंचिंग पर काम रोको प्रस्ताव लाना चाहते थे। जब कांग्रेस के कुछ सांसदों ने लोकसभा स्पीकर के करीब सरकारी दस्तावेज फाड़कर उछाले, तो उनमें से 6 को 5 दिनों के लिए संसद से सस्पेंड कर दिया गया। बाद में सभी कांग्रेसी सांसद सदन के बाहर चले गए और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा,
प्रजातंत्र के ऊपर काला धब्बा है जिस तरीके से एक्शन लिया गया है कल सरकार के द्वारा, और इसका पूर्ण जोर विरोध हम लोग करेंगे।
कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। कांग्रेसी नेता अंबिका सोनी ने कहा कि दूसरी पार्टियों के सांसद भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं।
राज्यसभा में हमारी आवाज इस तरह से विरोध करती रहेगी जिस तरह से ये जमहूरियत को कुचलने के प्रयास चल रहे हैं, हम अब कभी इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे। हम लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे साथ 8-9 और राजनीतिक दल हैं जिन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस को दिया है और कहा है कि ये गलत हो रहा है जो हो रहा है।
संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि कांग्रेस सांसदों के द्वारा इस तरह की हरकत शर्मनाक है। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा, मैं सांसदों की पार्टी देखकर फैसला नहीं करती। आज उन्होंने एक बार नहीं 4 बार कागज के टुकड़े फेंके, बच्चों जैसा काम किया। कॉलेज और स्कूल के बच्चों को हम क्या कहेंगे? आज कार्रवाई नहीं करते तो कल के लिए अनुशासन किस प्रकार रख पाएंगे? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भीड़ के हमले से हत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 3 बार इस मुद्दे पर बोला, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। जब तक कदम नहीं उठाए जाएंगे ये घटनाएं होती रहेंगी। इससे पहले 2015 में भी स्पीकर सुमित्रा महाजन ने पोस्टर दिखाने और शोर शराबा करने वाले कांग्रेस के 25 सदस्यों को 5 बैठकों के लिए संसद से निलंबित कर दिया था। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
बहुचर्चित नोएडा निठारी कांड में युवती का अपहरण कर रेप और मर्डर के मामले में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंधेर को फांसी की सजा सुनाई गई है। गाजियाबाद की स्पेशल CBI कोर्ट ने एक युवती की हत्या में पंधेर और सुरेंद्र कोहली को शनिवार को रेप और मर्डर का दोषी पाया था। निठारी कांड दिसंबर 2006 में राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया था। निठारी कांड के एक अन्य मामले में पहले भी कोहली को फांसी की सजा मिल चुकी है। पंधेर को कोर्ट ने हत्या और रेप की कोशिश समेत सबूत मिटाने और साजिश रचने का दोषी पाया। नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
शनिवार को ट्रायल कोर्ट ने पंधेर और कोहली को 20 साल की पिंकी सरकार की हत्या का दोषी पाया था। इन दोनों पर लड़की को अगवा करने, उसका बलात्कार करने और फिर उसकी जान लेने का आरोप है। 29 दिसंबर 2006 को दिल्ली से सटे नोएडा में पंधेर के घर के पीछे के नाले से पुलिस ने 19 कंकाल बरामद किए थे। बरामद किए गए इन 19 शवों में से 176 मामलों पर पंधेर और कोहली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। पिंकी सरकार की हत्या के मामले से पहले 6 मामलों में दोनों को सजा सुनाई जा चुकी है। 9 मामलों में अब भी सुनवाई चल रही है, जबकि सबूतों के अभाव में 3 मामलों पर चार्जशीट ही दायर नहीं की जा सकी। CBI की तरफ से जिरह करने वाले सरकारी वकील JP शर्मा ने BBC को बताया,
देखिए हमने तो अपनी तरफ से जो एविडेंस अवेलेबल था वो कोर्ट के सामने रख दिया था, सब विटनेसेस को एग्जामिन करा दिया था। अब कोर्ट ने उनको सबको एग्जामिन करने के बाद और डिफेंस सब देखने के बाद फिर कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, उसमें उनको होल्ड किया गिल्टी, और गिल्टी होल्ड करने के बाद में इसको जघन्यतम अपराध मानते हुए उन दोनों को 302 में फांसी की सजा सुनाई है।
इससे पहले गाजियाबाद की विशेष CBI अदालत ने चर्चित निठारी कांड से जुड़े नंदा देवी हत्या मामले में शुक्रवार को सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई। विशेष अदालत ने कोहली पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। निठारी हत्याकांड मामले से जुड़े 5 मामलों में दोषी करार दिए जा चुके सुरेंद्र कोहली को इस 6ठे मामले में अपहरण, हत्या, बलात्कार और सबूत नष्ट करने का भी दोषी ठहराया गया था। पिछले 5 मामलों में दोषी ठहराए जा चुके कोहली को इन सभी मामलों में मौत की सजा सुनाई गई थी। इस तरह इस छठे मामले में भी अब अधिकतम सजा उन्हें दी जा चुकी है। दिसंबर 2006 में जब 19 कंकाल पंढेर और कोहली के घर के पीछे मिले, उसके बाद सीबीआई को अपनी खोजबीन के दौरान मानव हड्डियों के कुछ हिस्से और 40 ऐसे पैकेट मिले जिनमें मानव अंगों को भरकर नाले में फेंक दिया गया था। इसके तुरंत बाद इलाके के 2 पुलिस कांस्टेबलों को बर्खास्त भी कर दिया गया। सीबीआई ने तुरंत ही इन दोनों को गिरफ्तार किया और 25 जनवरी 2007 को पंढेर और कोहली के साथ गाजियाबाद की एक अदालत परिसर में मारपीट हुई। सीबीआई दरअसल उन्हें वहां पेश करने के लिए लाई थी। बहरहाल पिंकी सरकार की हत्या के मामले पर आए इस फैसले पर निठारी के दूसरे परिवारों की तरफ से मुकदमा लड़ रहे वकील खालिद खान ने कहा,
हम पिंकी सरकार मर्डर केस की बात करें हैं तो पहले वाला जो केस था रिम्पाल दर मर्डर केस, जिसमें हाई कोर्ट ने पंडेर को रिलीफ देते हुए छोड़ दिया था, बरी कर दिया था, उस केस से और इस केस में बड़ा फर्क है। उसकी जितनी कमियां थी वो सारी इसमें पूरी कर ली गई थी प्रोसिक्यूशन एजेंसी के द्वारा, तो इसलिए वो कोई कमी अब है नहीं इसके अंदर में जिसके आधार पर इसको कोई राहत वहां से प्रदान हो सके।
हालांकि अभी मुरिंदर सिंह पंढेर और खुद अदालत में अपना मुकदमा लड़ रहे सुरिंदर कोहली के पास ऊपरी अदालतों में फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने का रास्ता बचा हुआ है। सोमवार को विशेष अदालत से बाहर निकलकर पंढेर के वकील इसका इशारा भी दे चुके हैं, लेकिन एक के बाद एक अपने खिलाफ आते फैसलों से पंढेर और सुरिंदर कोहली के विकल्प भी कम होते जा रहे हैं। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
राजस्थान में पाकिस्तान की सरहद से लगते बाड़मेर जिले में पुलिस ने बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल चोरी करने के आरोप में 31 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक ऑयल कंपनी के कर्मचारी भी शामिल हैं। पुलिस अभी 70 और लोगों की तलाश कर रही है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया है और केंद्र सरकार से जांच की मांग की है। जयपुर से नारायण बारेट की रिपोर्ट।
पुलिस ने क्रूड ऑयल चोरी की इस घटना की जांच में हाथ डाला तो पता चला कि यह जितना दिख रहा है उससे कहीं बड़ा मामला है। पुलिस कहती है कि इसके राष्ट्रीय आयाम है। पुलिस ने अब तक 31 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें तेल उत्पादन में लगी कंपनी के 10 कर्मचारी भी शामिल है। बाड़मेर के पुलिस प्रमुख गगनदीप सिंगला ने बीबीसी को बताया कि 100 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, साथ ही 30 से ज़्यादा ऑयल टैंकर भी जब्त किए गए हैं। पुलिस कहती है कि यह बहुत बड़ा मामला है। पुलिस के मुताबिक चोरी उस समय की जाती जब तेल कुओं से निकालकर परिवहन के लिए ले जाया जाता था। बाड़मेर में सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायक कैलाश चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस घटना की सीबीआई से जांच की मांग की है। श्री चौधरी कहते हैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है।
राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रद्रोह का मामला है, क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति है ये किसी की खुद की संपत्ति नहीं है। ये क्रूड है तो वो राष्ट्र का क्रूड है और उसके अंदर जो चोरी करता है वो राष्ट्रद्रोह के मामले में जेल जाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी से को भी चिट्ठी लिखी है इसके संबंध में और हमारे मुख्यमंत्री जी उनको भी चिट्ठी लिखे और उनको मिलकर हमने कहा है कि इसकी एसओजी से या डीजी से जाँच हो। ऐसा नहीं हो कि नीचे जो इस टैंकर वाला ड्राइवर है खलासी उसको पकड़ कर चिट्ठी कर दे, इसके अंदर वो जो बड़े चोर हैं उनको भी पकड़ लाना।
इस क्षेत्र में तेल उत्पादन का अधिकार केन ऑयल कंपनी को मिला हुआ है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने बीबीसी से कहा, जैसे ही उन्हें टैंकरों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली पुलिस को सूचित कर दिया गया। कंपनी के मुताबिक वो जांच में पूरा सहयोग कर रही है। कंपनी ने इससे पहले भी तेल चोरी की घटना की जानकारी पुलिस को देने का दावा किया है। कंपनी कहती है कि तेल कुओं से निकालकर पाइपलाइन से भेजा जाता है, लेकिन एक छोटा हिस्सा टैंकरों से भेजा जाता है। पुलिस यह पता लगा रही है कि यह चोरी कितने समय से की जा रही थी। पुलिस ने 2 दिन में कई स्थानों पर छापे मारे हैं। चोरी गया तेल देश भर में सप्लाई किया जाता था। सदियों तक उस रेगिस्तान ने पानी की एक एक बूंद का संचय किया, लेकिन धरती के नीचे जब तेल निकला आर्थिक समृद्धि ने मरुस्थल का नक्शा ही बदल दिया। पर यह घटना बताती है कि धन समृद्धि अपने साथ एक व्यवहार भी लाती है। नारायण बारेट, जयपुर, राजस्थान।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगामी 26 अगस्त को राज्य के सभी स्कूलों में एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित करने जा रही है, जिसे लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। 8वीं कक्षा से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए होने वाली इस प्रतियोगिता में देश की संस्कृति, महापुरुषों, परंपराओं जैसे विषयों पर सवाल पूछे जाएंगे। राजनीतिक दलों ने पार्टी के इस फैसले की यह कहकर आलोचना की है कि इसके जरिए पार्टी स्कूलों पर अपना एजेंडा थोपना चाहती है। वहीं शिक्षा से जुड़े जानकार भी इस तरह के कार्यक्रमों पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए लखनऊ से समीरा पंचमिश्र की रिपोर्ट।
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता यूं तो स्कूली छात्रों के लिए एक जरूरी और उपयोगी पहल हो सकती है, लेकिन यदि प्रतियोगिता में शामिल विषय और सवाल किसी सीमा में बांध दिए जाएं और आयोजक कोई राजनीतिक दल हो, वो भी सत्ताधारी, तो ऐसे आयोजनों पर सवाल न उठें ये असंभव है। बीजेपी ने तय किया कि वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष में इस साल 26 अगस्त को इस प्रतियोगिता का आयोजन करेगी, जिसमें राज्य भर के सभी स्कूलों के 8वीं से लेकर 10वीं तक के छात्र शामिल होंगे। कार्यक्रम के बारे में बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव ने विस्तार से जानकारी दी।
पार्टी संगठन ने जैसे वृक्षारोपण का अभियान पूरे प्रदेश में चला रखा हर बूथ पे, उसी तरीके से बच्चों में जो छात्र हैं उनमें सामान्य ज्ञान के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी देश और परंपराओं के प्रति जानकारी हो, जागरूकता बढ़े, इसको लेकर के अभियान। ये आरएसएस का कार्यक्रम नहीं, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। जो कमेटी है उन्होंने उसकी एक
बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में करीब 12 लाख छात्र शामिल होंगे। हरीश चंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक इसके लिए एक पुस्तिका छपवाई गई है और उसमें बताया गया है कि किन विषयों से संबंधित सवाल आएंगे। पुस्तिका में दीनदयाल उपाध्याय के अलावा हेडगेवार, स्वामी विवेकानंद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महापुरुषों के बारे में भी जानकारी दी गई है और प्रतियोगिता में यहाँ से भी सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी सवाल आएंगे। राजनीतिक दलों ने पार्टी के इस तरह के आयोजन पर सख्त ऐतराज जताया है। कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र मदान कहते हैं,
इसके पीछे इनकी यही एक सोच है कि जो आरएसएस की भावना है वो आने वाले भविष्य के दिमाग में अभी से इतना ज्यादा उसको भरने की कोशिश करे कि आने वाले समय में सब जो आज बच्चे हैं कल नौजवान होंगे, जो नौजवान है आगे और उम्र उनकी बढ़ेगी, वो सब आरएसएस मानसिकता के होते चले जाए। अगर ये परंपरा हर सरकार में इसी तरह बढ़ती चली जाएगी तो ये प्रदेश के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है।
वहीं शिक्षक विधायक और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा कहते हैं कि उन्हें ऐसे आयोजन की जानकारी नहीं है, लेकिन यदि ऐसा है तो ये ठीक नहीं।
विद्यालयों में अब हमको क्या सिखाना है, ये तो इतिहास, इन चीजों का इतिहास साक्षी होता है। आयोजन जो इस प्रकार के किए जाए, उन आयोजनों में भी मैं नहीं समझता कि इसमें समय लगाया जाए। इन चीजों में वेस्टेज होगा एनर्जी का और वेस्टेज होगा रिसोर्सेज का। बाकी जो सरकार है इनकी मेजोरिटी है, जो करना चाहे करेंगे ही, लेकिन मेजोरिटी का दुरुपयोग है ये।
बहरहाल पार्टी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और जल्द ही पुस्तिकाएं छपकर सभी स्कूलों में भेजी जाएंगी। 26 अगस्त को होने वाली प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे, लेकिन जानकारों का कहना है कि विपक्षी दलों के तेवरों को देखते हुए मौजूदा फॉर्मेट में प्रतियोगिता का हो पाना बेहद मुश्किल है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
बिहार में इस साल 1 मई से अब तक करीब 200 लोगों की मौत बिजली गिरने से हो चुकी है। सार दर सार इस प्राकृतिक आपदा का कहर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में बिहार सरकार इससे लोगों को बचाने के लिए किस योजना पर काम कर रही है? बिजली गिरने जैसे हालात बनने पर बचने के लिए खुद क्या क्या करना चाहिए, बता रहे हैं पटना से मनीष शांडिल्य।
वज्रपात, जिसे ठनका भी कहते हैं, मानसून के आसपास बिहार ही नहीं पूरे भारत में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा के रूप में सामने आता है। बीते कुछ वर्षों से यह आसमानी आफत हर साल हजारों की जान ले रहा है। 9 जुलाई को तो बिहार में वज्रपात से एक ही दिन में 32 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अब तकनीक के विकास के साथ साथ इसकी पूर्व सूचना भी मिल जाती है। बिहार का आपदा प्रबंधन विभाग इसकी समय पूर्व सूचना देने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की योजना पर काम कर रहा है। विभाग के अपर सचिव अनिरुद्ध कुमार बताते हैं,
कंपनी ने सेंसर लगाया है 23 जगहों पे, उनका सेंटर है और उस सेंटर से अर्ली वार्निंग पूर्व चेतावनी मिल जाती है कि इस इलाके में वज्रपात होने वाली है। ये 30 मिनट पहले सूचना मिल जाती है, तो हम लोग उसी सेंसर को यहाँ भी लगाएंगे। हमारे यहाँ 13 सेंटर में वो कवर हो जाता है पूरा बिहार, तो उससे होगा कि हम जनता को 30 मिनट पहले बता देंगे कि भाई इस क्षेत्र में आप सावधान रहिए, ठनका गिरने वाला है।
विभाग के मुताबिक ये सेंसर एक महीने के अंदर बिहार में लगा दिए जाएंगे। 2004 में वज्रपात से करीब देश भर में 1900 लोग मारे गए थे। यह आंकड़ा 2015 में करीब 10,000 तक पहुंच गया। जानकारों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस आसमानी कहर की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। खुले में इसके खतरे से घिरने के हालत में बचने के तरीकों के बारे में पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आनंद शंकर क्या बताते हैं, सुनिए।
आपका बाल वगैरह खड़ा होने लगे तो इसका मतलब है कि वज्रपात होने वाला है। यदि ऐसा फील हो तो वहीं पे कुकड़ो बैठ के सर को नीचे की ओर कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप सबसे ऊंचा वस्तु वहां पे ना रहे और लेटने का कोशिश मत करें खेतों में। आसपास का यदि पेड़ के नीचे है तो सबसे ऊंचा पेड़ नहीं होने का ध्यान रखने की जरूरत है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि पैरों के नीचे सूखी जमीन पे रहने का कोशिश करें। यदि ना मिले तो पॉलिथीन वगैरह पैरों के नीचे रखें।
वज्रपात की ज्यादा घटनाएं ग्रामीण इलाकों में सामने आती हैं। ऐसे में जानकारों का मानना है कि इसके बचाव के लिए इन क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने की बहुत जरूरत है। बिहार में वज्रपात को साल 2009 में ही प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया गया था। इस आपदा में मारे गए हर व्यक्ति के आश्रित को सरकार 4,00,000 रुपये का मुआवजा देती है। मनीष शांडिल्य, BBC पटना।
और अब आपके पत्रों के साथ हैं सुमिरनप्रीत कौर और राजेश जोशी।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और सुमिरनप्रीत कौर का भी।
नमस्कार
सुमिरन जी, चिट्ठियां आपके हाथ में हैं, पोस्ट कार्ड में देख रहा हूँ। आज ईमेल शायद आपके पास नहीं है या
ईमेल भी हैं?
बहुत सारे ईमेल्स भी होंगे। अच्छा, तो चिट्ठियों से शुरुआत की जाए।
बिल्कुल, और ये हाथ से पत्र लिखा है आमिर शाह ने, जो नौतन सोता टोला चंपारण बिहार से हैं। वो लिखते हैं कि पिछले 30 वर्ष से मैं आपका नियमित श्रोता रहा हूँ और सुबह की सभा में सलमान रावी की जो रोजगार के अवसर पर रिपोर्ट थी वो अच्छी लगी। केंद्र सरकार केवल रोजगार के आंकड़े दिखा रही है लेकिन गलत है, जबकि भर्ती जो है, जो वैकेंसी है।
जी हाँ, ये बहुत सारे लोगों का कहना है और हमारे श्रोता अमर शाह भी यही बात कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शाह जी, आप बहुत कम चिट्ठी लिखते हैं लेकिन जब भी चिट्ठी लिखते हैं मुद्दे की बात करते हैं।
जी, और अब सुझाव की बारी। ये सुझाव हमें दिया है प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने, जो अध्यक्ष हैं भारतीय रेडियो श्रोता संघ के, जो लिखते हैं अमेठी से, उत्तर प्रदेश से, और कहते हैं कि
कैथन पुरुआ अमेठी उत्तर प्रदेश से, मुझे इनका पता भी याद हो गया।
जी बिल्कुल वही है ये, और ये कहते हैं कि मैं BBC हिंदी का नियमित श्रोता हूँ और BBC में आजकल नए नए लोग आ रहे हैं। पहले एक जमाना था जब BBC हिंदी पर अगर कोई नया आता तो उसका परिचय दिया जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि परिचय भी हो उन लोगों का।
नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है आपका प्रमोद जी, और हम कोशिश करेंगे इस सुझाव का पालन कर सके। बस इसमें अड़चन यही है कि BBC जब आप पुराने दिनों की बात करते हैं तो सिर्फ रेडियो कार्यक्रम हुआ करता था और बहुत सारे लोग सिर्फ रेडियो का प्रसारण करने के लिए ही आते थे, इसलिए सबका परिचय होता था। अब हमारे बहुत सारे साथी हैं, जो नए साथी हैं, जो सिर्फ ऑनलाइन के लिए काम करते हैं या सोशल मीडिया पर काम करते हैं, रेडियो पर उनकी आमद बहुत कम होती है, इसलिए हम उनका परिचय करवा दें और अगले 6 महीने तक आप उनका नाम ही ना सुने, आवाज ही ना सुने, वो तो अच्छा नहीं रहेगा। बहरहाल, लेकिन सुझाव अच्छा है।
तो अगला पत्र हमें लिखा है बसंत कुमार ने, लालगंज बलिया उत्तर प्रदेश से, जो लिखते हैं कि रेहान फजल ने जो विवेचना प्रस्तुत की, इंदिरा गांधी ने जब सिक्किम को भारत में सम्मिलित करवाया, वो उन्हें बहुत पसंद आई और साथ में नई नई जानकारी भी मिली।
बहुत बहुत धन्यवाद। विवेचना के बारे में और भी कई चिट्ठियां आई हैं, मैं देखता हूं कि ईमेल से जो चिट्ठियां आई हुई हैं
जी,
आप उनको अगर देखेंगी तो उसमें बहुत सारी विवेचना की चिट्ठियां हैं।
जी, मैं 3 नाम अभी पढ़ती हूं। पहला ईमेल हमें लिखा है जूंजा राम ने, बाड़मेर राजस्थान से, जो कहते हैं इंदिरा गांधी पर रेहान फजल की जो विवेचना थी बहुत अच्छी लगी, मोहनलाल शर्मा की आवाज उन्हें बहुत आकर्षक लगती है। साथ ही मेरठ से नरसिंह लिखते हैं कि रेहान फजल द्वारा प्रस्तुत विवेचना उन्हें बहुत पसंद आई। अगला ईमेल हमें लिखा है मेरठ से नरसिंह ने, जो लिखते हैं कि रेहान फजल द्वारा प्रस्तुत विवेचना मनमोहक होती है, परंतु 21 जुलाई की जो विवेचना थी जिसमें उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि फूंक निकल जाती थी, उनके विचार में ना तो
इंदिरा गांधी के सिलसिले में उन्होंने इस्तेमाल किया,
तो इनके विचार में, जो नरसिंह जी लिखते हैं, कि ना तो ये शालीन है और ना ही आपके सेवा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना
होना चाहिए। जी। और भी मैं देख रहा हूँ, उमेश पांडे मुंबई महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, वो क्या लिखते हैं?
उमेश पांडे जी ने लिखा है कि रेहान फजल की जो इंदिरा गांधी पर विवेचना थी उसकी सामग्री पर मुझे कुछ नहीं कहना है, परंतु एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि ठंड के लिए अलंकार ठिठुरती या फिर कड़कड़ाती प्रयोग होता है, ना कि चिलचिलाती। तो ये उन्होंने,
चिलचिलाती तो धूप होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, चिलचिलाती धूप और कड़कड़ाती ठंड। भाई ये आपने जो उमेश पांडे जी और नरसिंह जी आपने जो लिखा है, ये रेहान फजल तक ज़रूर पहुंचा दिया जाएगा, और ये चिट्ठी तो वो खुद भी पढ़ते हैं, उन तक पहुंच ही चुकी होगी आपकी आलोचना। लेकिन आपको ये विवेचना पसंद आती है और आपको नई जानकारी मिलती है, ये बहुत ही सुकून की बात है हमारे लिए।
जी, और ये अगला ईमेल हमें लिखा है मंत्र मुदित ने, चानकीगढ़ नरकटियागंज बिहार से, जो लिखा है कि वात्सल्य राय जी द्वारा प्रस्तुत इंडिया बोल जो कार्यक्रम है वो उन्हें बहुत संपूर्ण प्रतीत हुआ। एक्सपर्ट खेल समीक्षक और कैप्टन मिताली राज के मूल्यवान विचारों और खिलाड़ियों के परिवार के बारे में जानने को मिला, जो इन्हें बहुत अच्छा लगा।
जी, ये मंत्र मुदित जी, आपने शनिवार के आप इंडिया बोल की बात कर रहे हैं, ये मैंने भी सुना था कार्यक्रम और वाकई बहुत अच्छा था, तो वात्सल्य जी को बहुत बहुत बधाई हो।
राजेश जी, अगर समय हो तो एक और चिट्ठी पढ़ लूं?
हाँ बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ नीले रंग का अंतर्देशीय लिफाफा आपके हाथ में है, किसी ने बहुत प्यार से चिट्ठी लिखी है।
जी हाँ, और इनका नाम भी है राजेश।
पूरा
नाम
है
राजेश कुमार सिंह, ग्राम बेनपा, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश से।
जी क्या लिखते हैं?
कहते हैं कि मैं दो बार पत्र लिख चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इस बार शामिल किया जाएगा। मैं 2007 से बीबीसी सुन रहा हूँ और मैं राजेश जोशी जी का फैन हूँ, मतलब राजेश जी को राजेश जी पसंद है। उनके बोलने का अंदाज, समाचार सुनाने का ढंग और इंटरव्यू के दौरान प्रश्न करने का जो तरीका है वो लाजवाब है।
राजेश जी, मैं बांदा आया हूँ बहुत सालों पहले और मुझे बांदा शहर, बांदा के लोग इतने पसंद आए थे कि मैं कई दिन वहाँ रहा था, लेकिन अब पता नहीं अगली बार कब आना होगा, लेकिन जब भी आना होगा आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हमारा समय चिट्ठियों का समाप्त होता है। अब तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और अगर ईमेल लिखना चाहें तो नोट कीजिएगा hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब बारी है खेल समाचारों की।
स्पोर्ट्स की दुनिया की खबरों के साथ मैं हूँ सुमिरन प्रीत कौर। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणॉय ने अमरीकी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में HS प्रणॉय ने भारत के ही परुपल्ली कश्यप को 21-15, 20-22, 21-12 से मात देकर खिताब में जीत हासिल की। उन्होंने इस जीत के साथ इतिहास रच दिया। इस टूर्नामेंट को जीतने वाले प्रणॉय पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। उनसे पहले किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने इस खिताब पर कब्जा नहीं किया है। हाल ही में हुए ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम, बेशक फाइनल में भारत को इंग्लैंड ने हरा दिया, लेकिन बहुत लोगों ने भारतीय क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस की सराहना की। फाइनल्स के बाद ICC ने वुमेन्स वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट 11 टीम की घोषणा की। इस टीम की कप्तान है मिथाली राज, जो है भारतीय क्रिकेट टीम की कैप्टन। इस टूर्नामेंट 11 टीम में भारत के 3 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें है हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा और मिथाली राज। और अब बात मेंस क्रिकेट की। भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच शुरू होगा 26 जुलाई से। चोट से उबरने के बाद वापसी करने वाले भारतीय बल्लेबाज KL राहुल श्रीलंका के खिलाफ बुधवार से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में बुखार की वजह से भाग नहीं लेंगे। राहुल ने कोलंबो में अभ्यास मैच में अर्धशतक जमाया था। KL राहुल खुद मानते हैं कि ऐसे उतार चढ़ाव उनके कंट्रोल में नहीं है।
मैं एक ऐसा इंसान हूं जो जैसी भी परिस्थिति हो उससे जूझ लेता है, पर हर चीज आपके बस में नहीं होती है। मैं अपनी सेहत का काफी ख्याल रखता हूं और मैं जो कर सकता था मैंने किया। मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा हूं।
भारत के इस श्रीलंका के दौरे में 3 टेस्ट मैच होंगे, 5 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच और 1 T20 मैच। स्पोर्ट्स की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के 6 सांसदों को 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। पाकिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक लाहौर के एक व्यस्त इलाके में हुए धमाके में 26 लोगों की मौत हो गई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक आत्मघाती बम धमाके में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 लोग घायल हो गए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और सलाहकार जेरेड कुशनर ने कहा है कि ट्रंप के चुनाव के दौरान उनकी रूस के साथ कोई साठगांठ नहीं थी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।